गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जैया गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन श्यारी यमुना तीरा वन श्यारी जया राधा माधव हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा त्रिल प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के श्री श्री गुरु एम गौरांग की समवेत भक्त वृंद की ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्ण करुणासिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयताम सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धम् कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के 15वें अध्याय का 52 नंबर का श्लोक। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 15 श्लोक 52। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निषेक आदि श्मशान अंतहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। निषेकादिश्मशानान्तहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। निषेकादिश्मशानान्तहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। निषेकादिश्मशानान्तहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। निषेकादिश्मशानान्तहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। निषेकादिश्मशानान्तहि संस्कार ही संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति। माता जी निषेक आदि जीवन का प्रारंभ, गर्भाधान संस्कार, श्मशान अंत ही तथा मृत्यु के समय जब शरीर को श्मशान घाट पर जलाकर राख कर दिया जाता है, संस्कार ही ऐसे संस्कार द्वारा संस्कृत शुद्ध किया गया द्विज दो बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण इंद्रियेषु इंद्रियों में क्रिया यज्ञ कर्म तथा यज्ञ जिनसे उच्च लोक में जाया जाता है, ज्ञान दीपेषु वास्तविक ज्ञान के प्रकाश से जिह्वति अर्पित करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, द्विज द्विजन्मा ब्राह्मण को गर्भाधान शुद्धिकरण के संस्कार द्वारा अपने माता पिता की कृपा से अपना जीवन प्राप्त होता है। शुद्धिकरण की अन्य क्रिया भी है जो जीवन के अंत तक चलती है। जब जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है, इस प्रकार योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के पश्चात भौतिकवादी कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति भौतिकतावादी कार्यों में रुचि लेते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। पिछले श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग अर्थात विविध प्रकार के इंद्रिय भोगों को भोगने हेतु भौतिक जगत में बने रहने की अभिरुचि की व्याख्या की जा चुकी है। अब इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह उच्च लोकों तक ऊपर उठने की विधि त्याग कर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करता है। जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं परंतु नास्तिक हैं वे प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते। वे हर हालत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है, जिससे कि भगवत धाम वापस जाया जा सके। यद्यपि इसे समझ पाना कुछ कठिन है, किंतु यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अपना ले और भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करे तो यह अत्यंत सरल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ सकता है कि कर्मकांड पद्धति के अनुसार यज्ञ करना समय का अपव्यय मात्र है और मात्र कर्मकांड को त्याग कर ज्ञान कांड को स्वीकार करना भी व्यर्थ है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड अमृत बलिया जेबे खाए नाना जोनी सदा फिरे कदरिय भक्षण करे तार जन्म अध पाते जाए। कर्मकांड या ज्ञान कांड का जीवन विष पात्र के तुल्य है और ऐसा जीवन अपनाता है मानो उसका जीवन नष्ट हो गया। कर्मकांड पद्धति में मनुष्य को बारंबार जन्म मृत्यु स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार ज्ञान कांड में मनुष्य को पुनः इस भौतिक जगत में आना होता है। एकमात्र परम पुरुष की आराधना ही भगवत धम जाने के सुरक्षा प्रदान करती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। महाराज युधिष्ठिर नारद जी से कई एक प्रश्न किए, खास करके गृहस्थों के मुक्ति को लेकर प्रश्न किए और उसी का उत्तर चल रहा है। उत्तर के क्रम में बहुत बहुत बातें आई हैं। जो लोग नियमित कथा में रहते हैं वो एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तो कार्तिक का महीना है, हो सकता है कि आधा से भी अधिक अतिथि भक्त हों और उनके मंदिर में कौन श्लोक चल रहा है। जो हो, आप कर्तव्य के विषय में सुन रहे हैं। नारद जी यह समझा रहे हैं कि व्यक्ति को शरीर मिला है और इसका लाभ लेना चाहिए। यह एक बहुत सुंदर रथ के समान है। इस रथ का उपयोग करके अपने शत्रुओं को पराजित कर लेना चाहिए, ये बहुत भारी सुविधा प्राप्त है। और इस सुविधा का कैसे उपयोग करेंगे, कैसे शत्रुओं को परास्त करेंगे, और उस क्रम में कह दिए कि रथ लेना है, धनुष बाण भी लेना है और तलवार को गुरु के अनुगत्य से तीक्ष्ण कर देना है, शांत धरा लेना है और अच्युत का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के शत्रु को परास्त करना है। यदि कोई गुरु का निर्देश नहीं स्वीकार करता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता है, तो ये रथ सहित ये घोड़ा और जो आयुध है सब विषय में डाल दिए जाएंगे। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि जब तक हम गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, तो अपनी ही इंद्रियां, अपने ही संसाधन विषय में हमको डाल देंगे, विषय रूप गर्त में डाल देंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अपना ही रथ है और घोड़े यदि बिगड़ंत हैं तो रास्ते से हट करके किसी गड्ढा में रथ को गिरा देते हैं, रथ रथी सब गड्ढा में चले जाते हैं। और उसी प्रकार यद्यपि इंद्रियां अपने हैं, शरीर अपना है, लेकिन यदि इनका ठीक से ट्रेनिंग ना हो तो यही दुर्गति में डाल सकते हैं। अब इस बात को सुन करके एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम वेद के मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक विधि से विवाह किए हैं, हम भोग कर रहे हैं, क्यों दुर्गति में जाएंगे, हम तो वेद के विधान के अनुसार चल रहे हैं। अब इस बात को सुन करके या इस प्रश्न के आशंका करके युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि वैदिक कृत्य है, वेद के विधान के अनुसार व्यक्ति चल रहा है, लेकिन वेद के विधान भी एक जैसे नहीं है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्ते त प्रवृत्ते न निवृत्ते न अश्नुते मृतम। कह रहे हैं कि वेद में ही दो प्रकार का पंथ है, एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, एक को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। ओ प्रवृत्ति मार्ग में पड़ गए तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ेगा, और यदि निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं तो अमृतम अश्नुते मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वेद में दो मार्ग है और इसको जानना होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि शुक्ल पक्ष गति येते, शुक्ल कृष्ण गति येते जगत शाश्वते मते। अनादि काल से दो प्रकार का मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण। इसी को दूसरे शब्दावली में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है अर्ची मार्ग और धूम मार्ग। उपनिषदों में इसका विशद व्याख्या है। एक को कहते हैं अर्ची मार्ग और एक को कहते हैं धूम मार्ग। तो एकया याति अनावृत्ति और अनया वर्तते पुनः, शाश्वती अनादि काल से दो पंथ है। एक का अनुसरण करेंगे तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, और अन्य का अनुसरण करेंगे तो आवर्तते पुनः, फिर से इसी आवर्तन में इसी चक्र में पड़ जाएंगे। और इसी से भगवान इन दोनों पंथों का ज्ञान दिया है और कह रहे हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। करें कि जो योगी एते श्रुति जानन जानाति, जो व्यक्ति ये दोनों पंथ को जानता है, और दोनों पंथ को जानता है तो जानने से उसको लाभ होगा, उसको मोह नहीं होगा, किसी भी अवस्था में वो मोहित नहीं होगा, बिबिल्डर नहीं होगा। और इसलिए भगवान सलाह दे रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। और इसलिए सदैव तुम योग से युक्त रहो, योग के मार्ग का अनुशीलन करो। तो यह कह रहे हैं कि अनादि काल से दो मार्ग प्रचलित हैं। अरे भाई, जब मुक्ति ही नहीं प्राप्त होगी तो ऐसे मार्ग का वेद में विधान क्यों कर दिया गया? देखिए, जो वेद में या गीता में बहुत बहुत मार्गों का विधान किया गया है वो लक्ष्य को देख करके नहीं, केवल लक्ष्य को देख करके नहीं, अधिकारी को देख करके किया गया। बहुत सारे लोग हैं कि भोग के अभाव में जीवन व्यतीत ही नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। और उनके लिए एक सुरक्षित मार्ग दिया गया है कि भोग भोगते हुए धीरे धीरे भगवान के तरफ बढ़ो। लेकिन अब एक मार्ग है कि उससे व्यक्ति सीधे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और मुक्ति का विभेद किया जाए और उसका दो भेद किया जाता है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ है कि हम धीरे 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 बढ़ते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और वहाँ ब्रह्मलोक में बहुत दिन रह करके जब प्राकृत प्रलय होगा और उस समय ब्रह्मा जी के साथ हम मुक्त हो जाएंगे। तो यह तो क्रम मुक्ति है, और एक मुक्ति है उसको सद्य मुक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो बस इस शरीर के त्याग करते ही मुक्त हो जाएंगे। अरे शरीर त्याग करने की बात तो दूर है, ठीक से भक्ति का अनुसरण करें तो इसी जीवन में शरीर के अंदर ही मुक्त हो जाएंगे। तो हम भक्ति का ठीक ठीक अनुसरण करें तो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे, और इसको सद्य मुक्ति कहा गया है। और मुक्ति का क्रम है क्रम से मुक्त होते हैं, और उसमें भी अब दो विभाग किया जा सकता है। एक विभाग है कि कई एक बार चक्कर लगाते 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 तब मुक्त होंगे, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और एक मार्ग है कि अब चल रहे हैं तो भले ही धीरे धीरे, लेकिन अब एक बार में ही इसी बारी में मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो यह सिद्धांत है और ये अनादि काल से चल रहा है, वेद का विधान है। और भगवान कई एक मार्ग का, यह भगवान के भक्त कई एक पंथ का जो वर्णन करते हैं, और उसका कारण यह है कि इस संसार में कई एक स्वभाव के लोग हैं, और सबके हित का विधान किया गया है कि भाई जिसको जो पसंद हो कम से कम उस पंथ को स्वीकार करो। लेकिन अब पंथ में जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद किया गया है, तो प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे तो पुनः संसार में आ जाएंगे। यह आवर्तन बहुत दिन तक चलता रहेगा। और निवृत्ति मार्ग का यदि अनुसरण करते हैं तो अमृतम अश्नुते, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों पंथ का यह वर्णन किया जा रहा है। तो आप लोग प्रवृत्ति मार्ग का जो पंथ है उसका क्या प्रोसेस है, क्या पद्धति है, इसका विवरण सुन चुके हैं। अब यहाँ इस श्लोक में, 52 नंबर के श्लोक में, अब निवृत्ति मार्ग क्या पंथ है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हम निवृत्ति मार्ग का विवरण नहीं प्रस्तुत करेंगे, निवृत्ति मार्ग का जो विवरण है उसको केवल प्रारंभ करेंगे। तो कह रहे हैं कि निषेकादि श्मशानांत ही संस्कारे संस्कृतो द्विज। पहले तो निवृत्ति मार्ग का अधिकारी कौन है इसका निर्धारण कर रहे हैं। निवृत्ति मार्ग का अधिकारी वही बन सकता है जिसके इंद्रियां संस्कृत हैं, जिनको संस्कार प्राप्त है। और संस्कार तो जन्म से पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु के बाद तक चलता रहता है। बहुत सारे संस्कार हैं कि आपका भी, व्यक्ति का भी उसमें भूमिका होती है, उसका भी अंश होता है। लेकिन संस्कार पर विचार करें तो अधिकांश संस्कार तो दूसरे लोग करते हैं। अब गर्भाधान संस्कार है तो ये तो माता पिता ही करेंगे ना, जीव का तो कोई अधिकार नहीं है। और जो अंत्येष्टि संस्कार है तो वे भी उसके पुत्र करेंगे। और भी जो अन्नप्राशन संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कोई एक संस्कार होता है, तो अधिकांश अर्थ में, अधिकांश केस में तो दूसरे लोग ही करते हैं। अब उस व्यक्ति की तो क्षमता ही नहीं है। तो जो हो, जिसके माता पिता अच्छा संस्कार दिए हैं तो उसको संस्कृत कहा जाता है। खास करके जनेऊ संस्कार हुआ तो उसको द्विज कहा जाता है। तो यह व्यक्ति अधिकारी है इस निवृत्ति मार्ग का। अब उसके लिए कह रहे हैं कि उसका पहला कर्तव्य होता है इंद्रियेषु क्रिया जज्ञान ज्ञान दीपेषु जुहुवति। उसका प्रथम कर्तव्य बतला रहे हैं, प्रोसेस बतला रहे हैं कि वह व्यक्ति क्रिया यज्ञ को अपने इंद्रियों में आहूत कर देता है। सुन लिए आप कि इंद्रियेषु क्रिया जज्ञान गा ज्ञान दीपेषु जुहुवति, ज्ञान दीपेषु इंद्रियेषु क्रिया जज्ञान जुहुवति। ज्ञान से दीप्त इंद्रियों में क्रिया योग को आहुति दे देता है। अनुवाद सुन लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि कुछ तो धारणा नहीं बन रही है। बात सही है, पर इंद्रियेषु इंद्रियों में आहुति देना है। देखिए, क्रिया यज्ञ होता है, कर्मकांड होता है, तो उसमें द्रव्य की आहुति देते हैं। कई एक पवित्र सामग्री जुटाते हैं, कई एक पवित्र द्रव्य जुटाते हैं और उसी द्रव्य की आहुति देते हैं। लेकिन क्रिया कांड का, कर्म कांड का ये जो रिचुअलिस्टिक है, इसका एक दोष बतलाया गया है कि इसमें हिंसा जरूर होता है। ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है तो वृक्ष और पशु भय के मारे कांपने लगते हैं। तो यज्ञ कर रहा है तो हमको तो काटेगा, यज्ञ करेंगे खंभा गाड़ने के लिए, सजाने के लिए कितने वृक्षों को काटते हैं, और हो सकता है कि आहुति देने के लिए किसी पशु का भी बलि कर दें। तो हिंसा पर आधारित है। अब हिंसा पर आधारित है तो इसे शांति मिलने के कोई जगह नहीं बचता है। मान लीजिए कि कोई कहे कि बिल्कुल अहिंसा पर आधारित यज्ञ किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसे बहुत लाभ की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो यज्ञ कर रहे हैं उसके पीछे भाई उद्देश्य क्या है। कोई भी यज्ञ कर रहा है तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार के समृद्धि के लिए, अपने सुख के लिए, उच्चतर लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? अधिकांश लोग तो यज्ञ इसीलिए करते हैं ना कि परिवार में समृद्धि रहे, हमारा जीवन सुखी रहे, हम उच्चतर लोक को प्राप्त करें। और इसके पीछे तो वासना है, इच्छा है, और जब तक वासना रहेगी संस्कृति का नाश नहीं होगा। ओ, अब निवृत्ति मार्ग के विषय में कह रहे हैं कि क्रिया यज्ञ जुहवती, क्रिया यज्ञ का कर्मकांड का ही आहुति दे देता है, मतलब कर्मकांड का त्याग कर देता है। कहाँ त्याग करता है? इंद्रियेषु, अपने इंद्रियों में। क्या इसका आशय है? आशय समझना चाहिए कि व्यक्ति को ज्ञान उदित हो जाता है, ज्ञान दीपे से जब उसको यह रियलाइजेशन होने लगता है कि भाई कोई भी व्यापार है, कोई यज्ञ है, कर्मकांड कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य इंद्रियों को सुख देना। तो जो भी व्यापार चल रहे हैं तो वे तो इंद्रियों पर ही आधारित हैं, तो इंद्रियों के लिए ही ये सब चीज कर रहे हैं। तो यज्ञ का जो विधान है, कर्मकांड है, तो उसको ये अनुभव होने लगता है कि तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रियों के लिए किया जा रहा है। तो इस भावना से भावित हो करके वह उनका त्याग कर देता, यही यज्ञ का आहुति देना है, क्रिया यज्ञ का आहुति देना है। आहुति तो त्याग के अर्थ में प्रयोग ही करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपने जीवन का आहुति देश के लिए दे दिए, आहुति त्याग के अर्थ में करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो ज्ञान मार्ग का अवलंबी है, निवृत्ति मार्ग का अवलंबी है, तो विचार करके कि जो भी यज्ञ है तो इंद्रियों के भोग के लिए ही है, और इसलिए उसका त्याग कर देता है। भोग का त्याग कर दिया इंद्रियों के लिए, इंद्रियों में आहुति दे दिया, अब फिर उसका आहुति का क्रम है, और उसको आगे के श्लोक में बतलाया गया है और उसको आप लोग सुनते रहेंगे विस्तार से, लेकिन एक संक्षेप में समझ लीजिए कि क्रिया कांड को यज्ञ का आहुति दे दिया इंद्रियों में और इंद्रियों की आहुति दे देता है मन में और मन की आहुति देता है वाणी में और वाणी का आहुति देता है ओंकार में और ओंकार को आहुत करता है बिंदु में और बिंदु को आहुत करता है नाद में और नाद को ब्रह्म में। अब ब्रह्म में आहुति दे दिया, उसका व्यापार ठप हो गया तो वो धीरे धीरे उच्चतर लोक को प्राप्त करता है, कई एक लोग उसकी सहायता करने लगते हैं और उस सहायता के बल से वो ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है। ब्रह्म लोक में बहुत दिन रहता है और जब सृष्टि का अंत होता है तो ब्रह्मा जी के साथ वह मुक्त हो जाता है। यह निवृत्ति मार्ग का प्रोसेस है, लेकिन आप ये बात सुन रहे हैं निवृत्ति मार्ग के त्याग की आहुति की, तो पहले तो इसके लिए योग्यता ही दे दिया गया कि जो संस्कृत है, जिसका संस्कार है, तो वही इसका अधिकारी, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरे प्रारंभ भी करें तो सफल नहीं होगा। आप देखते हैं कोई कोर्स करना है तो पहले टेस्ट लेते हैं या कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं कि यह पास होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। बिना योग्यता का इसमें सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। कोई पैरवी से एडमिशन कर भी दिया तो पढ़ाई नहीं समझ में आती है, अंत में वो फेल हो जाता है। तो योग्यता की आवश्यकता है, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि यह जो भी प्रोसेस दिया गया, पंथ दिया गया है, तो उसका लक्ष्य है मोक्ष। और एक पंथ ऐसा है कि उस पंथ का अनुसरण करते हैं तो मोक्ष तो रास्ते में छूट जाता है। मोक्ष के लिए उस पंथ का अनुसरण नहीं करते हैं, उस पंथ का अनुसरण करेंगे और मोक्ष कहाँ पीछे पीछे छूट गया और इसका आपको पता भी नहीं चलता है। ये शरीर बहुत भारी बंधन है, लेकिन शरीर कब गिर गया इसका पता भी नहीं चलता है। उदाहरण दिया गया है कि मदिरा मदांध जो भक्ति योग में लगे हुए हैं तो उनकी स्थिति होती है कि वे तो आनंद में उन्मत्त होते हैं। जैसे कोई मदिरा पी करके और पागल हो गया है, इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, तो उसका वस्त्र कहाँ गिर गया, कब गिर गया, इसका भी पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार जो भक्ति योग का आश्रय लेते हैं तो कब मुक्त हो गए, एक बंधन से कब छूट गए, उनको तो पता भी नहीं चलता। बहुत बहुत बंधन है, कई एक उपाधि है, इसका भी वर्णन दिया गया है। सबसे पहले विश्व का लय होता है, फिर तेजस का लय होता है, फिर प्राज्ञ का लय होता है, फिर तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। आप लोग पढ़ते हैं ते शब्द आ जाते हैं तो उस समय बहुत कठिनाई लगती है। यह समझना चाहिए कि भाई हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष की स्पृहा रख रहे हैं, तो उसका कारण है कि हमारे ऊपर बंधन है। तो बंधन तीन स्तर का है, एक को स्थूल शरीर कहते हैं, एक को सूक्ष्म शरीर कहते हैं और एक को कारण शरीर कहते हैं। तो इन्हीं सब उपाधियों के लिए ये तीन शब्द आते हैं, विश्व मतलब जो स्थूल उपाधि है और तेजस मतलब उससे मुक्ति हो जाती है जो सूक्ष्म उपाधि है और प्राज्ञ की अवस्था को प्राप्त करते हैं। पर इसका मतलब कि जो कारण है उपाधि है अविद्या है उसका नाश हो जाता है, तब हम तुरीय अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यह मोक्ष का प्रोसेस है। लेकिन ये जो बंधन है और इस पर आप विचार कीजिए कि इसके पीछे कारण क्या है। कथा प्रस्तुत करने का समय नहीं है लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव गए, उनसे प्रसन्न हो करके बलि महाराज प्रस्ताव रखे कि आपके जो इच्छा उसको मांग लीजिए, घर या हाथी घोड़ा या खाने पीने का सामग्री जो आवश्यकता हो। ये यहाँ तक बोल दिए कि यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है तो वह भी बतलाइए, हम किसी ब्राह्मण से कह करके आपके विवाह की व्यवस्था कर सकता हूँ, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। वामन देव उनकी बात को सुन करके उनकी बहुत प्रशंसा किए और कहे कि हम 3 डेग भूमि चाहते हैं अपने नाप से। उनका आशय था कि हमको इतना ही भूमि चाहिए जहाँ हम लेट सकें, कुटिया बना करके लेट सकें, तो इसलिए 3 डेग भूमि मांगे। सम्मितानि पदानि मम, अपने डेग से। अब तो बलि महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उनको संशय होने लगा कि इसका जो कांति है इसका तेज लगता है कि केवल शरीर का है, और कहने लगे कि शरीर में तो बहुत तेज है लेकिन बुद्धि एकदम नहीं। अरे फिर एक बार अवसर देता हूँ, थोड़ा विचार करके मांग लो, और अपने तरफ न भी विचार कर रहे हो तो हमारे तरफ विचार करो कि कहाँ तुम आए हो। लोकानाम एक ईश्वर है, सारे संसार का एक छत्र राज्य है, तो कम से कम इतना मांग लो जो हमारे पास आ जाता है उसको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कम से कम इस पर विचार कर लो। कह के नहीं, हमको 3 डेग भूमि। फिर बलि महाराज कहने लगे, अरे भूमि ही लेना है तो 3 डेग क्यों रहे हो, कम से कम इतना भूमि ले लो कि जीवन भर तुम्हारी आजीविका की चिंता न रहे। जब इतना प्रस्ताव देने लगे तब वामन देव भी बोलना प्रारंभ किए। वे कह रहे हैं कि थोड़ा विचार कीजिए कि जो 3 डेग से संतुष्ट नहीं होगा तो उसको सारा द्वीप मिल जाए, सब लोक मिल जाए, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगा। और सिद्धांत दे रहे हैं कि पुंसो यम संस्कृतर हेतु असंतोषो अर्थ कामयो। ये व्यक्ति जन्म मृत्यु में पड़ा है तो इसके पीछे कारण है असंतोष, और यदृच्छयोपपन्नेन संतोष मुक्ते स्मृत। और जो व्यक्ति संतोष को धारण करेगा तो असंतोष ही उसको मुक्त कर देगा। यदृच्छयोपपन्नेन प्रारब्ध व संयोग से जो संसाधन प्राप्त है और उसी में संतोष सीख गया तो मुक्त हो जाएगा। और जन्म मृत्यु का मुख्य कारण है या एकमात्र कारण है लोभ, असंतोष, और संतोष से व्यक्ति मुक्त होता है। तो यहाँ हम लोग जो निवृत्ति मार्ग का स्टेप पढ़ रहे हैं तो प्रथम स्टेप है कि भोग के स्पृहा का त्याग करना होता है। यज्ञ के लिए जो इतना कर्मकांड कर रहे हैं, इतना उद्यम कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण है इंद्रिय तृप्ति के संसाधन को जुटाना। तो प्रथम कर्तव्य है कि इस भावना को छोड़ देना। इंद्रिय तृप्ति के लिए संसाधन जुटाने की जो इच्छा है इसका त्याग करना। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तो जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वह संतोष और असंतोष, इसी का एप्लीकेशन प्रोसेस में किया जाता है। केवल संतोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ध्रुव महाराज जब राज्य के लोभ से अपने पिता के नगर से निकले तो नारद जी उनको समझाने लगे, कई एक बात कह रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि यद्यस्य दैव विहितम तेना सुख दुखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। यद्यस्य विहितम, यद्यस्य दैव विहितम, दैव के विधान से, हमारे प्राचीन कर्म के विधान से जो भी हमको संसाधन प्राप्त है, चाहे उसमें सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, यद्यस्य दैव विहितम सत्येन सुख दुख आत्मानं तोषयन् देहि, उसी से अपने को संतुष्ट रख रहा है तो तमसः पारमृच्छति, वह बंधन से माया से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो संतोष साधन है, यह साधन है। और जो भी निवृत्ति मार्ग के साधन है तो उसमें इसी का ट्रेनिंग है, इसी का एप्लीकेशन है कि जीवन में संतोष लाया जाए। लेकिन जो प्रोसेस है तो कठिन लगता है। अब जिसको कठिन मार्ग में रुचि है तो उसके लिए भगवान जो का भी शिक्षा दे दिए, उसके पंथ का भी उपदेश कर दिए हैं, लेकिन भगवान सावधान है कि कहीं यह भ्रम न हो जाए कि मुक्ति का यही एकमात्र पंथ है। अब गीता पढ़ेंगे 8वां अध्याय तो जोग मिश्रा ने, भक्ति मिश्रा जोग का वे विवरण दे रहे हैं, या जोग मिश्रा भक्ति का विवरण दे रहे हैं। उसमें बतला रहे हैं कि मन को एकाग्र करना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए। यदि ओंकार का उच्चारण करते हुए देह का त्याग करते हैं तो सहस्रार सहस्रार ब्रह्म से सान्निध्य प्राप्त हो जाएगा। अब इसे का वर्णन कर रहे हैं तो बहुत लोग तो इसी योग के अनुशीलन के तरफ ललायित हो जाएंगे, और ये करना बहुत कठिन है। अरे उच्चारण ही नहीं करने आता है, उसको नाद में लय क्या करेंगे और बिंदु के स्तर को क्या प्राप्त करेंगे। उच्चारण ही कठिन है, और भगवान इसके साथ ही शुद्ध भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। हम बहुत बहुत प्रयास करके, बहुत बहुत साधना करके जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह लक्ष्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और भगवान जोग मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हुए ही शुद्ध भक्ति का भी वर्णन कर रहे, वे कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो मम स्मरति नित्यशः। भाई एक पद्धति जरूर है कि आसन लगा करके शरीर को सीधा रह करके ओंकार का उच्चारण करते हुए हम शरीर का त्याग कर निश्चित रूप से सदगति मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत प्रयास करना है। और एक विधि है कि अनन्य चेता सत्तम यो मम स्मरति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वे कह रहे हैं कि एक ऐसा है कि अनन्य चेता, वो केवल भगवान पर विचार कर रहा है, भगवान को ही स्वीकार किया है, भक्ति को स्वीकार किया, उसके मन में भगवान और भक्ति को छोड़ करके कोई दूसरा आश्रय का विचार ही नहीं आता है तो उसको कहा जाएगा अनन्य चेता। वो अनन्य चेता सततम यो मम स्मरति नित्यशः, वो सबका आस भरोसा छोड़ करके केवल भगवान का आश्रय रखा है और नित्यशः हमेशा उन्हीं के स्मरण में, कोई आसन पर बैठ करके नहीं, कोई अपना काम कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, ये भोजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। तो तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, जो स्वाभाविक रूप से भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, तो उसके लिए अपेक्षा नहीं है कि किस काल में किस स्थान पर किस विधि से शरीर का त्याग करे। भगवान का स्मरण कर रहा है तो कहीं भी उसका शरीर छूट जाए तो उसके लिए भगवान सुलभ है। देखिए, हमको भगवान के पास जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना होगा, बहुत बहुत साधन को अपनाना होगा, लेकिन भगवान हमारे पास आना चाहे तो उनके लिए बिल्कुल आसान कार्य है। तो जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जैसा उसके पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति है और भगवान का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो खुद भगवान ही उसको पिकअप कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो यह आसान मार्ग है। और भक्ति जो की विशेषता है कि इसमें कोई अधिकार का भेद नहीं है। अभी जो निवृत्ति मार्ग ज्ञान यज्ञ की बात सुन रहे हैं तो इसमें संस्कार की अपेक्षा है, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इसको अंगीकार कर सकता है। तो जरूर है कई एक पंथ का निर्देश दिया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का संदेश है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना सबसे सुगम उपाय है भगवान के भक्ति को स्वीकार करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत पंथ की बात होती है, उसको सुनने में कोई दोष नहीं है, सुनना चाहिए, लेकिन भरोसा भगवान और भक्ति का रखना चाहिए, भक्ति योग का ही अनुशीलन करना चाहिए। हरे कृष्णा।